नमस्कार, आप सुन रहे हैं जनसत्ता पर कारोबार जगत की बड़ी खबरें। सार्वजनिक क्षेत्र के सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने मार्च 2022 में समाप्त तिमाही में 310 करोड़ रुपए का एकल शुद्ध लाभ कमाया है। फंसे हुए कर्ज के लिए प्रावधान घटने से बैंक मुनाफे की स्थिति में लौटा है। इससे पिछले वित्त वर्ष की समान तिमाही में बैंक को 1,349 करोड़ रुपए का शुद्ध घाटा हुआ था। शेयर बाजारों को भेजी सूचना में बैंक ने कहा कि वित्त वर्ष 2021-22 की चौथी तिमाही में उसकी कुल आय बढ़कर 6,419.58 करोड़ रुपए पर पहुंच गई, जो इससे पिछले वित्त वर्ष की समान तिमाही में 5,729.58 करोड़ रुपए थी। पूरे वित्त वर्ष 2021-22 में बैंक ने 1,046 करोड़ रुपए का शुद्ध लाभ कमाया है। इससे पिछले वर्ष 2020-21 में बैंक को 888 करोड़ रुपए का घाटा हुआ था। बैंक की संपत्ति की गुणवत्ता में भी सुधार हुआ है। मार्च 2022 के अंत तक बैंक की कुल ऋण पर एनपीए घटकर 14.84% रह गई, जो एक साल पहले 16.55% थी। अडानी एयरपोर्ट होल्डिंग्स लिमिटेड ने सोमवार को बताया कि स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक और बारक्लेस बैंक पीएलसी के संघ से उसने 3 साल की ईसीबी सुविधा के जरिए $25 करोड़ जुटाए हैं। इस सुविधा के तहत एएएचएल अतिरिक्त $20 करोड़ की राशि जुटा सकती है। वित्त जुटाने की ये कवायद एएएचएल की पूंजी प्रबंधन योजना की दिशा में पहला कदम है। अडानी एंटरप्राइजेस लिमिटेड की कंपनी एएएचएल देश भर में महत्वपूर्ण हवाई अड्डों के विकास एवं प्रबंधन का काम देखती है। कंपनी के एक प्रवक्ता ने कहा, एएएचएल के वित्त पोषण के साथ पूंजी प्रबंधन योजना का पहला चरण शुरू हो गया है और अब हम अपने विमानन कारोबार को दुनिया भर के सबसे बड़े हवाई अड्डा मंचों में से एक बनाने पर ध्यान देंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार को कहा कि 3 जन सुरक्षा योजनाओं, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना और अटल पेंशन योजना ने बीमा और पेंशन सुविधा को आम आदमी की पहुंच में लाने का काम किया है। सीतारमण ने इन तीनों सामाजिक सुरक्षा योजनाओं की 7वीं वर्षगांठ के मौके पर कहा कि बीते 7 वर्षों में इन योजनाओं के तहत नामांकित एवं लाभान्वित होने वाले लोगों की संख्या इनकी सफलता का प्रमाण है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 9 मई 2015 को इन तीनों योजनाओं की शुरुआत की थी। वित्त मंत्री ने कहा, जीवन ज्योति बीमा योजना शुरू होने के बाद से अब तक 12.76 करोड़ लोगों ने बीमा कवर के लिए नामांकन कराया है। इस दौरान 5,76,121 लोगों के परिवारों को दावे के रूप में 11,522 करोड़ रुपये मिले हैं। ये योजना कम आय वाले परिवारों के लिए महामारी के दौरान बेहद उपयोगी साबित हुई। वित्त वर्ष 2020-21 में भुगतान किए गए लगभग 50% दावे कोविड महामारी में जान गंवाने वाले लोगों के परिवारों ने किए थे। इंजीनियरिंग क्षेत्र की कंपनी एलएनटी को झारखंड सरकार से सिंचाई की एक बड़ी परियोजना मिली है। इस परियोजना के तहत सिद्धेश्वरी नदी से पानी लेकर झारखंड के दुमका जिले में 22,283 हेक्टेयर क्षेत्र की सिंचाई के लिए जल उपलब्ध कराया जाएगा। कंपनी ने बयान में कहा, एलएनटी कंस्ट्रक्शन के जल एवं बहिस्राव उपचार कारोबार को झारखंड के जल संसाधन विभाग से ऑर्डर मिला है। कंपनी की इसी तरह की लिफ्ट सिंचाई परियोजना झारखंड के गढ़वा जिले में भी चल रही है। पिछले 2 साल लगातार उछाल के बाद अब इस्पात कीमतों में ठहराव आ रहा है। घरेलू रेटिंग एजेंसी क्रिसिल की एक रिपोर्ट से यह अनुमान लगाया गया है कि कमजोर सीजन के चलते इस्पात का दाम चालू वित्त वर्ष के अंत तक लगभग 60,000 रुपये प्रति टन पर कारोबार कर सकता है, जो पिछले महीने 76,000 रुपये प्रति टन के शिखर पर था। क्रिसिल ने सोमवार को एक रिपोर्ट में कहा कि आपूर्ति में व्यवधान, विश्व स्तर पर कार्बन कटौती के उपायों को लेकर जारी अनिश्चितता, विशेष रूप से चीन में और रूस यूक्रेन युद्ध से उत्पन्न भू राजनीतिक जोखिम के कारण कीमतें अभी भी ऊंची बनी हुई हैं, जिसके चलते कच्चे माल की लागत बढ़ गई है। रिपोर्ट में कहा गया है कि अगले महीने मानसून की शुरुआत से कीमतों में करेक्शन की संभावना है। उस समय निर्माण कार्यों के लिए इस्पात की मांग में कमी आएगी। ऐसे में घरेलू मिलों को निर्यात की तुलना में घरेलू स्तर पर निचला प्रीमियम प्राप्त होगा। एजेंसी के एसोसिएट निदेशक कौस्तव मजूमदार के अनुसार, मानसून और कम आकर्षक निर्यात के कारण कमजोर मांग के सीजन की शुरुआत का मतलब है कि घरेलू स्तर पर इस्पात की कीमतें नीचे आएंगी। मार्च 2023 तक इस्पात का दाम घटकर 60,000 रुपये प्रति टन तक आ सकता है। ये पिछले महीने हासिल 76,000 रुपये प्रति टन के स्तर से काफ़ी कम होगा। दिल्ली उच्च न्यायालय ने केंद्र को निर्देश दिया है कि सीमा शुल्क केंद्रीय उत्पाद शुल्क और सेवा के समाधान आयोग की प्रधान पीठ के लिए चेयरमैन और एक सदस्य की नियुक्ति की प्रक्रिया 6 हफ्ते के भीतर पूरी की जाए। अदालत ने कहा कि मुंबई में आयोग की अतिरिक्त पीठ के लिए एक सदस्य और वाइस चेयरमैन की नियुक्ति की प्रक्रिया भी 6 हफ्ते के भीतर पूरी की जाए। अदालत ने केंद्र सरकार को निर्देश दिया कि वो चेन्नई और कोलकाता में निपटान या समाधान आयोग की पीठों के लिए वाइस चेयरमैन और अन्य सदस्यों की नियुक्ति के पहलू को भी देखे। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघी और न्यायमूर्ति नवीन चावला ने कहा, हमारा निर्देश है कि पहले दिल्ली में प्रधान पीठ के लिए एक सदस्य और चेयरमैन की नियुक्ति तथा मुंबई में अतिरिक्त पीठ के लिए एक सदस्य और वाइस चेयरमैन के पद पर नियुक्ति 6 हफ्ते के भीतर पूरी की जाए। विस्तार से खबरें पढ़ने के लिए आएं जनसत्ता.com पर। नमस्कार।